سورہ ہود کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13، آیت نمبر 14۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 12، 13، 14، ان تینوں آیتوں کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ نے سورہ ہود کی ابتدا جو ہے قرآن پاک کی حقانیت، اس کی تعریف و توصیف سے فرمائی تھی، صداقت قرآن، اور فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی دعوت یہی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ میں تمہارے لیے نذیر بھی ہوں، بشیر بھی ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لے کر کے دعوت دینی شروع کی، توحید کی دعوت، اور بتایا کہ دیکھو میں تمہارے لیے بشیر بھی ہوں، نذیر بھی ہوں، تو وہ لوگ جن کی گھٹی کے اندر شرک رچا بسا تھا، بس وہ مقابلے میں آئے۔ کبھی تو قرآن کے خلاف باتیں کرتے کہ یہ خود ہی گڑھ لیا ہے، اور قرآن کی تاثیر کہیں نظر آتی تو کہتے یہ تو جادو ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں نعوذ باللہ، کبھی کہتے تھے کہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعرانہ کلام ہے، اور پوری قوت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی ایک منصوبے کے تحت۔ آپ کو پتا ہے جب مخالف اپنے کام سے نہ رکے تو کوشش ہوتی ہے کہ کچھ لے دے کر کام چلایا جائے، ہوتا ہے نا ایسا، تو ان کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، لیکن یہ جو شرک کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف، اس کو اس میں سے نکال دیں، باقی ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شرک والی باتیں، ہمارے بتوں کی قباحت برائی، یہ نکال دیں، باقی سب ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ایسے کر سکتے تھے، دعوت توحید کے لیے تو شرک کی قباحت اور اس کی گندگی کو بیان کرنا ضروری ہے، آپ بیان کرتے تھے۔ پھر کبھی کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں तो आपके पास खजाना क्यों नहीं, ये वहद पहाड़ जो है इसको सोने का बना दें, या आपके साथ कोई फरिश्ता हो फिर हम मानेंगे, फरिश्ता हो, इस तरह की बातें किया करते थे। अल्लाह जल्ल शानहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है आज की पढ़ी गई आयात में। ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चारों तरफ से ज़बानी हमले, जिस्मानी हमले, हर तरह से दबाव, तो आप थे तो इंसान, आप मुतासिर होते, ऐसे वक्त हौसले की ज़रूरत हुआ करती थी, तो अल्लाह जल्ल शानहु हौसले की आयात उतारते, आपको तसल्ली देते कि आप घबराएं नहीं, अब आप अपना काम करते रहें, जमे रहें, हिम्मत दिखाएं, शुजात दिखाएं, फस्तकिम कमा उमिरता, जैसा हुक्म दिया गया है आप इस्तकामत बरतें, घबराएं नहीं, ये सब जेर होंगे। और ऐसे ही हुआ, सारे के सारे जेर हुए, नाकाम हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक तसल्ली देते थे। आज की आयात भी तसल्ली की हैं। फरमाया कि अच्छा आप बताएं कि क्या शायद आप इन लोगों के बेजा एतराज़ात से, ताना जनी से, मजनून कहने से, वही की कुछ बातें आप छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे? जाहिर है नहीं छोड़ेंगे, जब नहीं छोड़ेंगे तो आप तंग भी ना हुआ करें, बस आप छोड़ें, बस आप बशीर नदीन अपना काम करते जाए। और फरमाए कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ये मुखालिफिन कहते हैं कि खुद ही गढ़ लिया है, तो आप यूं कह दीजिए, अच्छा गढ़ लिया है तो तुम भी गढ़ लो, तुम भी इस तरह कलाम ले आओ, चलो 10 सूरतें ले आओ, यहाँ 10 सूरतों की बात की, और इस 10 सूरतों के बनाने में अल्लाह के अलावा जिसको चाहो बुला लो, कोशिश कर लो अगर तुम सच्चे हो। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली रखें, अगर वो आपके इस चैलेंज को कबूल ना करें तो फिर ये बात वाज़े है कि ये अल्लाह के इल्म के साथ कुरान उतारा गया है और इसकी दावत भी बरहक है, ला इलाहा इल्लाहु। अब फिर आप बता दें कि अगर तुम मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं ला सकते अपनी फसाहत और बलागत के बावजूद, फहल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या मुसलमान होते हो? हो जाओ। आज की आयात का खुलासा, चुनांचे आयत देखें, तर्जुमा देखें, फरमाया पहली आयत के अंदर, फलअल्लका, पर शायद कि आप तारिकुन, छोड़ देंगे तंग होकर, बाज़मा युहाइलैक, बाज़ उन बातों को जो आपकी जानी वही की जाती हैं, यानी तौहीद की तबलीग को छोड़ देंगे, वज़ाइकुम बिही सदरुक, और आपका सीना इसकी वजह से तंग होता है, ज़ाइक ज़ैक तंगी, तंग होता है इसकी वजह से आपका सीना, अन यक़ूलू, इस बात पर कि वो कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि कंज, क्यों नहीं उतारा गया इनके ऊपर कोई ख़जाना, या कभी यूँ कहते हैं, औजा माहु मलक, या आता इनके साथ कोई फरिश्ता। आप फरमा दीजिए, इन्नमा अंता नज़ीर, आप तंग ना हुआ करें, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, वल्लाहु आला कुल शैइन वकील, और अल्लाह ही हर चीज़ पर निगहबान है, ज़िम्मेदार है। ज़ाहिर है आप तंग होकर छोड़ तो सकते नहीं, मकसूद है कि आप तंग भी ना हुआ करें। और फिर तसल्ली देते हुए फरमाया, अम यकुलून, क्या ये लोग कहते हैं, इफ्तरा हो, इसको खुद ही गढ़ लिया है, इस तरह की बातें करते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, फ़तू, ले आओ, बे अशर सुवरिन, 10 सूरतें मिसली इसकी तरह, मुफ्तरियातिन, जो गढ़ी हुई हों, वदऊ मन इस्तता तुम, और तुम इस काम के लिए पुकार लो, बुला लो जिनको भी तुम चाहो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फिर फरमाया, फ़इलम यस्तजीबू लकुम, बस अगर वो लोग आपके चैलेंज को कबूल ना करें तो आप ऐलान कर दीजिए कि फ़ालमु, जान लो, अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाह, कि बेशक ये अल्लाह के इल्म के साथ उतारा गया है कुरान, और जिसकी दावत यही है वह अल्लाह इलाहा इल्लाहू, और नहीं है कोई माबूद मगर वही। फहल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम मुसलमान बनते हो, ताबेदार बनते हो? और इसके अंदर जवाब हो गया इस बात का भी, कहते थे मौजज़ा दिखलाएं, बहुत पहाड़ सोने का बन जाए। जवाब हो गया सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये कुरान है। मौजज़े का मकसद ये सदाकत और हक्कानियत साबित हो जाए। कुरान से ज़्यादा बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है? कभी कहते थे फरिश्ता हो मौजज़ा, सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है, इसका मुकाबला करो। यहाँ अल्लाह जल्ला शानहू ने 10 सूरतों की बात की, फिर सूरतुल बकरा में तो फरमाया कि फ़ातु भी सूरत में मिथली, चलो एक छोटी सी सूरत ले आओ, 10 सूरतें तो दूर की बात है, एक छोटी सी सूरत ले आओ। और साथ ही फरमाए वलन तफ़अलु, तुम हरगिज़ नहीं बना सकते ऐसी आयत, ऐसी सूरत, क़यामत तक के लिए चैलेंज दे दिया। और फरमाया कि जब तुम नहीं कर सकते तो फिर डरो अल्लाह की गिरफ्त से, अज़ाब से, कबूल कर लो इसको, कुरान को भी कबूल कर लो, कुरान की सबसे पहली दावत तौहीद को भी कबूल कर लो, बस यही बचाव का तरीक़ा है। हासिल कलाम यह कि आज की आयात के अंदर उनके मुतालबे मौजज़ात पर कुरान के बारे में फरमाए सबसे बड़ा मौजज़ा है, और साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है ये जो कहते हैं कि शिर्क की बातें निकाल दें, हम नहीं सुनना चाहते, हमारे बुतों को बुरा भला ना कहें, जाहिर आप ऐसा कर तो नहीं सकते, जब नहीं कर सकते तो इनकी बातों पर तंग भी ना हुआ करें, आप तसल्ली रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तसल्ली की आयात उतरती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताज़ा अज़्म के साथ, एक नई रूह के साथ मैदान में आते थे और डंके की चोट पर तौहीद की दावत दिया करते थे, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद मगर एक अल्लाह। अल्लाह जल्ला शान से दुआ है कि अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक की अज़मत बयान फरमाई है, अल्लाह हमें भी कुरान पाक से नस्बत और ताल्लुक़ कमाल दर्जा नसीब फरमाए। ऐसे ही अल्लाह पाक ने जो कुरान के ज़रिए दावत तौहीद दी है, अल्लाह हमें भी दिल से कबूल करके शिर्क की सारी शक्लों से अल्लाह हमें बचने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह जल्ला शानहू ने दावत दी है, अल्लाह उसको दिल से कबूल करके कुरान के सारे अहकाम पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह हम सबको अपने दरबार में कबूल फरमा ले। आज जुमा का दिन, और जुमा का दिन दो बड़े मुबारक आमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक, एक तो सूरतुल कहफ की तिलावत का एहतमाम, ख़ास किस्म का नूर मिलता है, और एक हदीस में हर जुमा को जो तिलावत करता है तो इस तिलावत के बरकत से पूरे हफ्ते के अंदर जो इंसान से गुनाह होते हैं अल्लाह सारे ही माफ़ फरमा देते हैं। और दूसरा ख़ास अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक का अहतमाम, चलते फिरते, उठते बैठते, अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह हम सबको अपने दरबार में कबूल फरमा लें।